पृष्ठ संख्या 7। तैतिरीय उपनिषद में शिक्षा ग्रंथों तथा याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडुकीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा आदि के, जिनकी रचना शिक्षा के व्यवस्थित रूप की दृष्टि से की गई थी, 6 अंग वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान यानी संहिता बतलाए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि संगीत की क्रियात्मक रूप के साथ साथ संगीत शास्त्र के ज्ञान का भी वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। भिन्न भिन्न वेदों की शिक्षा ग्रंथ उसकी विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न थे। इसी कारण विशिष्ट शिक्षा ग्रंथ में संबंधित वेद के अनुकूल वर्णोच्चारण, स्वरोच्चारण तथा अन्य विधियों का विधान निहित था। शिक्षा ग्रंथों में ऐसा तत्व निहित है जिनसे ज्ञात होता है कि आरंभिक युग में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, प्रतिशाख्य आदि विषयों का अध्ययन अध्यापन उन विद्यालयों में होता था जिन्हें प्राचीन साहित्य में चरण कहते थे। साधारण रूप से वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के 3 रूप प्रचलित होने का संकेत मिलता है। पहला पिता पुत्र के रूप में, दूसरा गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, तीसरा गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना। सामगान पिता अपने पुत्रों को साम प्रशिक्षण देकर यज्ञों में ले जाते थे, जहाँ वे अपने पिता द्वारा किए जाने वाले कर्म को सीखते थे। इससे सामों का संरक्षण भी स्वतः हो जाता था। सुनकर सीखने की परंपरा के ही कारण संभवतः वेदों को श्रुति कहा गया है। सामगान में निपुण व्यक्ति यज्ञ कर्म के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते थे, अतः उनकी ख्याति अपने आप दूर दूर तक फैल जाती थी, जो स्वाभाविक ही था। फलस्वरूप उद्गात वर्ग में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति स्वतः इन आचार्यों के पास प्रशिक्षण हेतु पहुंचते थे। संभवतः यही गुरु शिष्य परंपरा का उदय था। साम का वास्तविक स्वरूप स्वर पर आधारित है, अतः प्रारंभिक अवस्था में सामगान के रूप में वैदिक ऋचाओं के स्वर सहित पाठ का स्वरूप निर्धारित हुआ। कालांतर में सामगान के सुस्वर पाठ की लगभग 1,080 ऋचाएँ यानी शाखाएँ व उपशाखाएँ विकसित हुई, जिसका समर्थन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में भी किया गया है। साम गायकों की केवल 3 शाखाएं प्रमुख थीं, कौथुमीय जो गुजरात और बंगदेश में, राणायनीय जो महाराष्ट्र में, और जैमिनीय जो कर्नाटक में। इन सभी की अपनी अपनी विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा थी। सामगान की विधि विधान के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों से पर्याप्त परिचय प्राप्त होता था। इनमें प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, देवताध्या ब्राह्मण तथा शाट्यायन ब्राह्मण, जैमिनी व तलवलकर ब्राह्मण उल्लेखनीय हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में सामगान के मंद्र साम, उग्रसाय, क्रौंच साम आदि साम गुणों के अनुकूल प्रकारों का उल्लेख हुआ है। इसमें सामगान के 2 प्रकारों का निर्देश हुआ है। पहला ऋचाओं से युक्त सामगान, दूसरा ऋचाओं से विहीन साम। आश्रय के रूप में ऋक का गान अवश्य किया जाता रहा है, किंतु उसका प्रमुख एवं मूल रूप स्वरूप स्वर ही रहा है। स्वर का संगीत मूलक अर्थ ब्राह्मण काल में विकसित हो चुका था, अतः जब सामगान की विधि विधान का व्यापक प्रचार होने लगा, तब धीरे धीरे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गुरुकुल व गुरु आश्रम स्थापित होने लगे। इन गुरु आश्रमों में साम की शिक्षा मौखिक रूप से ही दी जाती थी। उत्तरवर्ती ग्रंथों में भी गुरु शिष्य के संबंध की घनिष्ठता के विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं, तथा कठोपनिषद में उल्लिखित सूत्र इस प्रकार है, ओम सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थात परमेश्वर हम दोनों गुरु शिष्यों की सम्मान रूप से रक्षा करे, हम दोनों द्वारा विद्या सफल हो, हम एक दूसरे के द्वेष न करें एवं दोनों को समान रूप से विद्या के फल का भोग कराएं। हम दोनों समान रूप से विद्या लाभ के लिए उपयुक्त सामर्थ्य अर्जित करें। हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौमिक इन तीनों प्रकार के विद्यनों का शमन करें। प्रश्नोपनिषद में भी इस प्रकार का संकेत उपलब्ध होता है, तातः स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया समरत्स समत्यस्थ यथा कामं प्रश्नानं पृच्छत। यदि विज्ञास्यामः सर्व ह वा वक्ष्याम इति। अर्थात ब्रह्मवेता महर्षि ने ब्रह्म जिज्ञासु ऋषियों से कहा कि तुम पुनः तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ एक वर्ष तक गुरु गृह में रहो, तदंतर अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न पूछो, यदि मुझे आता होगा तो सब बताऊंगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि गुरु शिष्य की अनुसंधान प्रतिभा धैर्य गुरु सेवा की संतुष्ट गुरु सेवा से संतुष्ट होकर गुरु उपयुक्त शिक्षा देते थे। संगीत शिक्षण की प्राचीन पद्धति तथा उसके मूलभूत तत्वों के विषय में परिचय विशिष्ट लक्षण ग्रंथों के रूप में संयुक्त संस्कृत साहित्य में प्राप्त नहीं होता। आधुनिक अर्थ में प्राचीन शिक्षा के शास्त्र के सिद्धांतों का विवरण भी ग्रंथ के रूप में एक स्थान पर कहीं नहीं प्राप्त होता, तथापि उसके संबंध में परिज्ञान तत्कालीन विभिन्न ग्रंथों में न्यूनाधिक मात्रा में विकीर्ण पाया जाता है। इन्हीं विकीर्ण सूत्रों को एकत्रित करने का प्राचीन संगीत शिक्षा की प्रणाली तथा शिक्षा के सर्वमान्य सिद्धांतों के संबंध में एक मानचित्र प्राप्त हो जाता है। वैदिक युग में संगीत शिक्षा के विषय में जो विवरण उपलब्ध होता है उसके अंतर्गत किसी विद्यालय या शाला का उल्लेख नहीं हुआ है, और न ही कक्षा या वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या, पाठ्यक्रम, पुरुष व महिला वर्ग के अनुरूप, परीक्षा, स्वरलिपि आदि के विषय में कोई विवरण प्राप्य है। जो कि उल्लेख इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनसे यही विदित होता है कि उस समय शिक्षण व्यक्तिगत ही था, जिसे गुरु शिष्य पद्धति कहा जाता था। इस प्रकार संगीत शिक्षा का ज्ञान गुरुमुख के माध्यम से ही दिया जाता था। पृष्ठ संख्या 9। इस युग में सामगान के रूप में संगीत शिक्षा का स्वरूप व्यवस्थित हो गया था। प्राचीन कालीन शालाएं। वर्तमान समय में संगीत के संस्थागत व सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था प्राचीन शिक्षा पद्धति की ही देन है। प्राचीन काल में संगीत के संस्थागत शिक्षण की व्यवस्था बहुत अधिक विकसित हुई। प्राचीन काल और मध्य युग में भी संगीत की शाखाएं जगह जगह देखने की में आती हैं। रामायण कालीन शाखाएं। रामायण नामक भारत का प्राचीनतम महाकाव्य है। आदि काव्य के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ ईसापूर्व 500 से 600 में रचा गया। ऐसा जर्मन के सुप्रसिद्ध कविद्वान याकोबी का कथन है। मूल ग्रंथ के अध्ययन से यह तथ्य निर्भ्रांत रूप से प्रमाणित होता है कि आदि कवि वाल्मीकि एक अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्होंने एक अच्छे संगीत शिक्षक की भांति तालीम देते हुए अपने सब शिष्यों को सिखाया। इन्हीं के आश्रम में मुनिवेश में निवास करने वाले मधुर सुस्वर संपन्न राजकुमार कुश और लव उनके प्रथम शिष्य हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें संगीतबद्ध रामायण की शिक्षा दी। संगीत की परम प्रवीण गुरु वाल्मीकि ने दोनों शिष्यों को सीना बसीना तालीम दी। महर्षि वाल्मीकि एक साधारण संगीतज्ञ नहीं थे, बल्कि एक अच्छे वाग्गेयकार आचार्य भी थे। महाभारत कालीन शालाएं। गीतम नृत्य विचित्रम च वादित्रम विविधम तथा शिक्षाभिपयाभ्यदम राजन विरटस्य पुरस्त्रियः। महाभारत का भारतीय इतिहास में साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है। संगीत की दृष्टि से भी यह कला बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस युग में श्री कृष्ण जी जैसे महान संगीतज्ञ हुए। इसी युग में इनके अतिरिक्त अर्जुन भी महान संगीतज्ञों की गिनती में आए थे। जब तक एक वर्ष वह अज्ञातवास में रहे थे, तब उस समय अर्जुन ने बृहन्नला नाम धारण करके विराट राजा के दरबार में रहकर विराट की पुत्री उत्तरा को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा दी थी। राज दरबार की राजस्त्रियों को भी संगीत शिक्षा देने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर अर्जुन को गांधर्व विशारद बताया गया है। महाभारत काल में बड़े नगरों में संगीत शिक्षा के लिए संगीत शालाओं का प्रबंध शासन की ओर से किया जाता था तथा उनके संचालन का समुचित प्रबंध रहता था। पृष्ठ संख्या 10। मत्स्य राज की राजधानी में युवतियों की नृत्य शिक्षा के लिए ऐसे ही विशाल नृत्य भवन का निर्माण किया जाता था। इस समय जन सामान्य से लेकर चक्रवर्ती सम्राटों तक को सामान्य शिक्षा के साथ गांधर्व व संगीत शिक्षा दिए जाने के विशेष परंपरा थी। अन्य कलाओं एवं विद्याओं के समान गंधर्व की शिक्षा भी गुरुकुल परंपरा से दी जाती थी, ऐसा विद्वानों का मत है। भारत के पास शिक्षण संस्थाओं का अपना संपन्न इतिहास है। वैदिक युग के इतिहास के समय वेद ज्ञाताओं ने जिस गुरुकुल शिक्षा पद्धति की नींव डाली थी, उसे लंबे समय तक न केवल भारतीय ज्ञान के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया, बल्कि उस ज्ञान के माध्यम से उच्च वर्गों के बीच अधिक से अधिक फैलाया, जिससे समाज की अभूतपूर्व प्रगति हुई। शिक्षण संस्थाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी शुरुआत बौद्ध विहारों से हुई। इन विहारों में भिक्षु भिक्षुणियां रहती थीं, किंतु बाद में तक्षशिला विद्यादान का प्रमुख केंद्र बन गया, जिसमें वैदिक विद्यालय, अष्टादश विद्यालय, शिल्प विज्ञान विद्यालय आदि विभिन्न अध्ययन विभागों में 500-500 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। धीरे धीरे वैष्णव मंदिरों में भी संगीत की शिक्षा दी जाने लगी। भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने मठ स्थापित किए, जो वास्तव में शिक्षा के विशिष्ट केंद्र ही थे। वाराणसी इस समय का दूसरा शिक्षा केंद्र था, जिसमें संगीताध्यापन में भी गांधर्व का स्वतंत्र संकाय या फैकल्टी थी, तथा इसके अधिष्ठाता के रूप में भारत विख्यात संगीतज्ञ की नियुक्ति हुआ करती थी। इस समय जनसामान्य से लेकर चक्रवर्ती सम्राटों तक को सामान्य शिक्षा के साथ गांधर्व या संगीत की शिक्षा दिए जाने की विशेष परंपरा थी। अन्य कलाओं एवं विधाओं के समान गांधर्व की शिक्षा भी गुरुकुल परंपरा में ही दी जाती थी, ऐसा विद्वानों का मत है। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में लगभग 20 मील दूर पश्चिम में तक्षशिला नाम का एक स्थान था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा के केंद्र के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। तक्षशिला में आज के जैसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जैसी कोई शिक्षण शाला नहीं थी। विद्वानों का आवास ही वहां संस्था बन गई थी, जहां पर आचार्य अपने अच्छे शिष्यों के सहयोग से शिक्षण कार्य संपन्न करते थे। अध्ययन काल व गुरु शिष्य अनुपात का कोई निश्चित नियम नहीं था। अन्य कई विषयों के अलावा यहाँ 18 शिल्पों एवं संगीत नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी, ऐसा विद्वानों का अपना अनुमान है। इसी युग में काशी नाम का दूसरा विशाल शिक्षा केंद्र था, जो कि तक्षशिला युग में शिक्षा के लिए विशेष सुप्रसिद्ध हो गया था। यहाँ पर ब्राह्मण लोग अपनी स्वतंत्र पाठशालाएं चलाते थे। पृष्ठ संख्या 11। ईसा की 5वीं सदी में पटना के निकट नालंदा और 11वीं 12वीं सदी में विक्रमशिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दो प्रमुख शिक्षा केंद्र आरंभ हुए। कुछ विद्वानों का कहना है कि नालंदा, विक्रमशिला तथा तदंतपुरी जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में भी गांधर्व की स्वतंत्र संकाय अथवा फैकल्टी थी, तथा इसके अधिष्ठाता के रूप में भारत विख्यात संगीतज्ञ की नियुक्ति हुआ करती थी। कुछ अन्य शिक्षा केंद्रों का जिक्र भी इस सिलसिले में किया जाता था, लेकिन भारतीय संगीत के इतिहास में किसी ऐसे कलाकार या शास्त्रज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता जिसने तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला तक किसी भी शिक्षा केंद्र में संगीत या गंधर्व की शिक्षा ग्रहण की हो। असल में शिक्षा के इन तमाम केंद्रों का विकास उस युग में हुआ जब समाज उच्च और निम्न वर्गों में बढ़ चुका था, दार्शनिक चिंतन विकास पर था और अपने ऐतिहासिक चरणों में आध्यात्मिक विचारधाराएं शक्तिशाली हो उठी थीं। इन मंदिरों, मठों, पाठशालाओं में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें आध्यात्मवादी दर्शन की प्रमुखता रहती थी। शिल्प, संगीत, नृत्य आदि के व्यवसाय को ईसा पूर्व 600 से लेकर 2000 साल तक या तो हेय समझा जाता था या दूसरी श्रेणी का कर्म समझा जाता था। इस स्थिति में इन केंद्रों में संगीत आदि की तालीम का दूसरा कोई अच्छा प्रबंध किया जाता हो, इसकी गुंजाइश कम ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि नाट्य तथा संगीत कला को राजाश्रय प्राप्त था, जिससे वह उस समय की गणिका, दासी और नट आदि उस कला को आसानी से सीख लेते थे। उस समय गीतवाद्य और नृत्य, नाट्य आदि कलाओं की शिक्षा देने वाले सभी व्यक्तियों को राजा की ओर से द्रव्य सामग्री दी जाती थी। इसके पाठ्यक्रम में वैशिकी कला के अतिरिक्त गीत वाद्य, नृत्य, नाट्य वाद्यों में वेणु, वीणा और मृदंग आदि की शिक्षा दी जाती थी। ललित कला, नाट्य इन संस्थाओं में परिवर्तन आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्रवर्तन आदि की शिक्षा दी जाती थी। इन संस्थाओं में वे ही शिक्षार्थी प्रवेश पाते थे जो या तो उनके वंशज होते थे या फिर संगीत का व्यवसाय करने की इच्छा रखते थे। उनमें प्राथमिकता सिर्फ गणिकाओं को ही दी जाती थी। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार नाट्य व्यवसाय करने वाले लोगों को नृत्य तथा अभिनय का यथाविधि शिक्षण दिया जाता था। रंगमंच पर नाट्य स्त्रियां भी भूमिका अभिनय करती थीं तथा प्रसंग पड़ने पर पति के अतिरिक्त किसी अन्य नट की भार्या का अभिनय करने में संकोच का अनुभव नहीं करती थीं। पुरुषों की भूमिका पुरुष वर्ग ही करता था तथा स्त्री भूमिका का अभिनय स्त्रियां करती थीं। प्राचीन काल की संगीत शालाओं में एक नाम वात्स्यायन का भी आता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ कामसूत्र में संगीत शालाओं का विशेष वर्णन किया है। पृष्ठ 12। इन सभी शालाओं का संचालन समस्त नगर अथवा विभिन्न व्यवसायिक गणों की तरफ से होता था। नगर के पुत्रों तथा गणिकादि वर्गों को संगीत की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इन शालाओं का पाठ्यक्रम समाप्त करने का गणिकी तथा अन्य विद्यार्थी न केवल जीविका उपार्जन के योग्य बन जाते अपितु सुसंस्कृत नागरिक कहलाने के लिए पात्र बन जाते थे। ऐसा देखने में आता है कि प्राचीन काल में शाला पद्धति काफी प्रचलित थी। भास ने भी अपने नाटकों में लिखा है कि राजकन्याओं को बाल्यकाल से ही संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए संगीत शालाओं की व्यवस्था की थी। ये संगीत शालाएं राजभवन की परिसर में हुआ करती थीं, जिनमें गीत वाद्य और नाट्य आदि कलाओं का विधिवत संस्थागत शिक्षण किया जाता था। इन संगीत शालाओं में प्रवेश के लिए कोई भी स्वर परीक्षा आदि नहीं हुआ करती थी। जो व्यक्ति संगीत सीखने का इच्छुक होता था वह स्वयं आकर गुरु के पास सीखता था। शूद्रक के समय में नाटक के आरंभ में संगीत गान की परंपरा का प्रचलन था। शूद्रक के मुच्छकटिका नाटक में जब सूत्रधार अपनी संगीत शाला को शून्य देखता है तब वह अपने दारिद्र्य का स्मरण करता है। इस संगीत शालाओं में संगीत तथा नाट्य दोनों कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जो धनी रसिकों की छत्र छाया में परिवर्धित होती थी। महाकवि वाण के हर्षरचित में राजभवन के संगीत गृह का उल्लेख है। राजप्रसादों की जिस रचना का उल्लेख बाण में है उसकी परंपरा 77वें ईसा पूर्वकालीन साहित्य से लेकर उत्तरवर्ती साहित्य में बराबर पाई जाती है, जिसमें संगीत शाला का अनिवार्य स्थान रहा है।